आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का विषय बहुत विस्तृत और जटिल है और उसको ठीक ठीक समझने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, कानून, राजनीतिक, शिक्षा, धर्म, जनांकी और समाज विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत से अध्येताओं के दीर्घकालीन सहयोग की आवश्यकता होगी। उसके लिए प्रादेशिक, भाषागत तथा अन्य विभिन्नताओं का लेखा जोखा करना पड़ेगा, किंतु मेरा उद्देश्य कहीं अधिक सीमित है। मैं यहाँ उन दो अवधारणाओं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर पहले की अपेक्षा कुछ अधिक व्यवस्थित ढंग से विचार करने का प्रयास करूंगा, जो मैंने भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं की व्याख्या के लिए कुछ वर्ष पहले प्रस्तुत की थी। ये अवधारणाएं जिन दो प्रक्रियाओं का संकेत करती हैं, उनमें से संस्कृतिकरण भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रही है और आज भी चल रही है। दूसरी ओर पश्चिमीकरण उन परिवर्तनों की ओर संकेत करता है जिसका भारतीय समाज में समावेश अंग्रेजी राज में हुआ और जो कुछ क्षेत्रों में अधिक वेग के साथ स्वाधीन भारत में भी हो रहा है। संस्कृतिकरण के भिन्न पश्चिमीकरण भारतीय आबादी के किसी विशेष अंश तक सीमित नहीं है और उसका महत्व उससे प्रभावित होने वालों की संख्या और प्रभावित होने के प्रकार दोनों ही दृष्टियों से लगातार बढ़ रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के ने कुछ बातों में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और यह असंभव नहीं कि इस तेजी के लिए स्वाधीनता आवश्यक पूर्व शर्त या स्थिति हो। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के बीच जटिल और दुरूह अंतर संबंध ऐसा क्षेत्र है जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही रूपों में विश्लेषण और चिंतन के लिए उर्वर है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाएं जब पहली बार प्रस्तुत हुई तो उन्होंने भारतीय क्षेत्र में काम करने वाले समाज विज्ञान और मानव विज्ञान के विद्वानों को आकर्षित किया। यह पाया गया कि संस्कृतिकरण एक ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो भारत के विभिन्न भागों के हिंदुओं के बीच व्यापक रूप में पाई जाती है। यह भी सूचना मिली कि वह भील और उरांव जैसे कुछ जनजाति समूहों में भी सक्रिय है। देश के विभिन्न भागों में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के साथ इन दोनों प्रक्रियाओं के संबंध को भी ठीक से समझने की ये अवधारणाएं सामाजिक परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए अभी उपयोगी हैं या नहीं, अथवा किस हद तक उपयोगी हैं और इनमें आगे स्पष्टीकरण, परिष्कार, विस्तार अथवा संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, ये सब बातें स्वयं पता लगाने का अवसर मुझे तब मिला जब रविन्द्रनाथ ठाकुर स्मारक भाषणमाला समिति ने मुझे 1963 की ठाकुर भाषणमाला के लिए आमंत्रित किया। मगर मैंने यह कार्य कुछ हिचक के साथ ही स्वीकार किया, क्योंकि मैं यह भली भांति जानता हूँ कि भारत भर के हिंदुओं के बारे में सत्य होने का दावा करने वाली स्थापनाएं प्रस्तुत करने में कितनी कठिनाइयां और जोखिमें हैं। अब मैं समझ सका हूँ कि अपने पिछले अधिकांश कार्य में मुझे कितनी सुविधाएं थी। विषय अधिक निश्चित थे और वे छोटे से प्रदेश तथा उसके भीतर रहने वालों के एक विशेष वर्ग से संबंधित थे और उस संबंध में मैं स्वयं ही बहुत सी सामग्री एकत्र की थी। किंतु एक प्रकार से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन जैसा विषय चुना, क्योंकि उसने मुझे बलपूर्वक सूक्ष्मता के अपने खोल से बाहर निकाल दिया। भारत जैसे देश में जहां प्रादेशिक अनेक रूपता बहुत है और जिसके निवासी सैकड़ों जातियों में विभाजित है, सूक्ष्म अध्ययन की सीमाएं स्पष्ट ही है। दूसरी ओर बृहद अध्ययन में वे सब सूक्ष्मताएं, शुद्धताएं, बारीकियां छूट जाने की संभावना रहती है जो केवल सविवरण सूक्ष्म अध्ययन में ही प्राप्त हो सकती है। एक स्वतः सिद्ध सत्य को दोहराने की जोखिम उठाकर भी मैं कहूंगा कि भारतीय समाज वैज्ञानिकों को स्वभाव और पद्धति दोनों में ही उभय निपुण होना पड़ता है, जिससे अवसर के उपयुक्त किसी भी प्रकार का अध्ययन कर सके। सूक्ष्म अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तो बृहद अध्ययन से परिप्रेक्ष्य और एक से दूसरे में संचरण अत्यंत आवश्यक होता है। संस्कृतिकरण पर विचार करने से पहले मैं संक्षेप में इस बात का परीक्षण करूंगा कि किस प्रकार वर्ण की प्रभावशाली अवधारणा ने परंपरा प्रधान अथवा अंग्रेज पूर्व युग में जाति के गतिशील पक्षों को सचमुच गौर बना दिया था। यह तथ्य कि वह अवधारणा भी जाति के कुछ पक्षों को समझने के लिए आज भी प्रासंगिक है, उसमें निहित भ्रांतियों और विकृतियों को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। संक्षेप में वर्ण में सन्निविष्ट जाति की मुख्य विशेषताएं ये हैं। प्रथम, एक भारत व्यापी सोपान संगठन मौजूद है जिसमें विभिन्न प्रदेशों में कोई विभिन्नताएं नहीं है। द्वितीय, वर्ण केवल चार अथवा यदि हरिजनों को भी शामिल कर लिया जाए तो शब्दशः अंत्यज है तो पांच है। तीसरा, सोपान स्पष्ट है और चौथा वह अटल है। निसंदेह जाति इस अर्थ में एक भारत व्यापी घटना है और हर स्थान पर ऐसे आनुवंशिक अंतर्गामी समूह पाए जाते हैं जिनका सोपान बना हुआ है और इनमें से प्रत्येक समूह का एक या दो धंधों से पारंपरिक संबंध होता है। हर जगह ब्राह्मण हैं, अछूत हैं और किसान, दस्तकार, व्यापारी और तथा सेवक जातियां हैं। जातियों के बीच संबंध अनिवार्यतः अपवित्रता और पवित्रता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। संसार, कर्म, धर्म जैसे कुछ एक हिंदू धर्मशास्त्री प्रत्यय जाति प्रथा में बुने हुए हैं, पर यह ज्ञात नहीं है कि इन अवधारणाओं का भान सर्वव्यापी है अथवा सोपान की केवल कुछ ही श्रेणियों तक सीमित है। यह उस क्षेत्र के संस्कृतिकरण की मात्रा पर निर्भर है, पर कुछ एक सार्वभौमिक विशेषताओं की उपस्थिति के कारण हमें महत्वपूर्ण प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केवल यही नहीं कि कुछ जातियां जैसे भड़बूजा, कहार, बारोट अथवा चारण देश के केवल कुछ ही भागों में पाई जाती हैं, या कि कुछ धंधों पर आधारित जातियों की स्थिति देश के हर भाग में अलग अलग है, बल्कि यह बात भी ध्यान देने की है कि जाति मुख्यतः एक प्रादेशिक व्यवस्था के रूप में ही मौजूद और कार्यशील है। वास्तव में भारत के समस्त ब्राह्मणों की तो बात ही क्या, एक ही प्रादेशिक भाषा बोलने वाले समस्त ब्राह्मणों का भी अंतर्गामी समूह नहीं होता। उनमें भी एक दर्जन या उससे भी अधिक अंतर्गामी समूह पाए जाते हैं। इसी तरह एक छोटे प्रदेश के भीतर भी एक जाति साधारणतः केवल कुछ या अन्य जातियों के साथ पारंपरिक व्यवहार रखती है, सबके साथ नहीं, किंतु कुछ जातियां विस्तृत क्षेत्र में फैली पाई जाती हैं और आमतौर पर इसका अर्थ यह है कि उनके विभिन्न अंशों में सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं। इसके अतिरिक्त औसत किसान के लिए अन्य भाषाई क्षेत्रों में जातियों के नाम सर्वथा अपरिचित होते हैं। उनका अर्थ वर्ण के आतंककारी ढांचे में रखने पर भी समझ में आ जाता है। आधुनिक भारत के प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में सैकड़ों जातियां अथवा अंतर्गामी समूह हैं। चार या पांच वर्ण केवल मोटी मोटी अखिल भारतीय श्रेणियां सूचित करते हैं कि जिनमें असंख्य जातियों को कुछ अत्यंत सीमित उद्देश्यों के लिए समूहित किया जा सकता है। वर्ण आदर्श के अनुसार हरिजन या अछूत जाति व्यवस्था के बाहर हैं और हरिजनों के संपर्क अन्य चार वर्णों के सदस्यों को अपवित्र व्यवहार के बाहर है, व्यवस्था के बाहर हैं और हरिजनों से संपर्क अन्य चार वर्णों के सदस्यों को अपवित्र करता है। पर यदि किसी प्रदेश की जातियों के बीच आर्थिक, सामाजिक ही नहीं कर्मकांडी संबंधों को भी देखा जाए तो हरिजन उस व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। वे कृषि में कुछ आवश्यक आर्थिक कार्य पूरा करते हैं, प्रायः गांव के सेवकों, हरकारों और मेहतारों का कार्य करते हैं और गांव के उत्सवों, त्योहारों पर ढोल पीटते हैं तथा सामुदायिक भोज की पत्तले उठाते हैं। वर्ण आदर्श में किसी जाति के स्थान पर या उसके बारे में कोई संदेह नहीं होता, किंतु पद क्रम के स्थान का निश्चित होना जाति मात्र की विशेषता नहीं है। वास्तव में जाति व्यवस्था के दोनों छोर भी उतने अचल नहीं है जितने बताए जाते हैं। कुछ ब्राह्मण समूहों को इतना नीचा माना जाता है कि वे हरिजन तक के हाथ का बना भोजन नहीं खाते। यह स्पष्ट है कि पारस्परिक स्थान के बारे में अस्पष्टता या संशय आकस्मिक या महत्वहीन नहीं है, बल्कि चालू प्रथा के रूप में जाति की आवश्यक विशेषता है। दो जातियों का एक दूसरे के श्रेष्ठ होने का दावा करना कोई असाधारण आचरण नहीं बल्कि एक ऐसी गतिशील व्यवस्था की स्वाभाविक उपज है जिसमें आगे बढ़ने के प्रयास में कुछ धक्कम धक्का और संघर्ष होता ही रहता है। इस भांति वर्तमान वास्तविक सोपान में जाति का स्थान बदलने की संभावना रहती है जबकि वर्ण आदर्श में प्रत्येक वर्ण का स्थान सदा के लिए निर्धारित रहता है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि वर्ण आदर्श में निहित यथार्थ की विकृति के बावजूद अभी तक जीवित रह आया है। अंत में जाति का वर्ण आदर्श इस अर्थ में सचमुच एक सोपान है कि उसमें पुरोहित वर्ण सबसे ऊपर होता है और पद निर्धारण की कसौटी धार्मिक आधार से प्राप्त होती है। विभिन्न वर्णों के क्रम का उद्देश्य ही ब्राह्मण स्वरूप परिता के सिद्धांत का समर्थन है और वह क्रम केवल अंशतः ही देश के विभिन्न भागों में जातियों के पद की वास्तविकता के अनुरूप है। किंतु इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य यह बात है कि किसी जाति को लौकिक शक्ति प्राप्त हो तो या तो वह उसके कर्मकांडी पद में प्रतिबिंबित हो जाती है या उसके फलस्वरूप आगे पीछे जाति का स्थान ऊंचा हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि जाति व्यवस्था का वर्ण आदर्श भारतीय इतिहास के वैदिक युग में क्रमशः विकसित हुआ और प्रारंभिक ब्राह्मण लेखकों ने उसे उस समय वर्तमान जाति व्यवस्था के स्थूल विवरण के रूप में स्वीकार कर लिया। इन लेखकों ने उन प्रथम तीन वर्णों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जो उपनयन संस्कार के कारण द्विज कहलाते थे। घुरे के अनुसार वर्ण धर्म अथवा विभिन्न वर्णों के आचरण संहिता उत्तर वैदिक काल के बहुत अधिक विस्तार हुआ। इस काल में ब्राह्मण वर्ग की स्थिति बहुत दृढ़ हुई और ब्राह्मणों की बढ़ती हुई श्रेष्ठता की तुलना में शूद्रों की औनति और भी तीव्रता से उभर आई। क्षत्रियों का पूरी तरह पराभव हो गया और वैश्य कम से कम उनमें से आम लोग शूद्रों के अधिकाधिक समीप पहुंचते गए। तीनों निम्न वर्णों को आदेश हुआ कि वे ब्राह्मण के उपदेशों के अनुसार रहें जो उनके कर्तव्यों को भी निर्धारित करें और राजा के ऊपर तदनुकूल उनके आचरण को नियमित करने का भार पड़ा। ब्राह्मण विधिकारों ने जाति व्यवस्था के ऐसे आदर्श का प्रतिपादन किया जिसमें वे सर्वोपरि थे और जो उन्हें अन्य जातियों तथा राजा के कर्तव्यों की घोषणा करने का अधिकार देता था। स्वयं ब्राह्मणों द्वारा अपने लिए किए गए दावे और सोपान के विषय में उनके विचार तो समझ में आते हैं, पर यह बात समझ में नहीं आती कि बहुत से भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने उन्हें ऐतिहासिक सत्य के रूप में कैसे मान लिया है। ग्रामीण भारत की कितनी प्रभु किसान जातियों ने विभिन्न वर्णों के नियमों का नाम भी सुना होगा अथवा सुना हो तो उनकी ओर कोई ध्यान दिया होगा, और यह बात भी समझ में नहीं आती कि गांव में रहने वालों से कैसे इन नियमों का पालन कराया जाता होगा अथवा उनके उल्लंघन के लिए कैसे दंड दिया जाता होगा। आज भी भारत सरकार के समस्त साधनों और सुविधाओं के बावजूद इस बात का पक्का प्रबंध बड़ा कठिन सिद्ध हुआ है कि भारतीय संविधान को जो अधिकार हजनों को प्रदान करता है उन पर भारत के 5,60,000 गांवों में सचमुच अमल किया जा सके तो फिर प्राचीन अथवा मध्ययुगीन भारत में परिस्थिति क्या रही होगी, यह निष्कर्ष पाठक स्वयं ही निकाल सकते हैं। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि नागर और शिक्षित भारतीय वर्ण आदर्श को चालू व्यवस्था के रूप में जाति का सच्चा चित्र मानते रहे हैं। मेरा अनुमान यह है कि वर्ण आदर्श अंग्रेजी काल में विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप अधिक लोकप्रिय हो गया। जैसे अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्यायालयों से 1864 ईस्वी तक ब्राह्मण पंडितों ने की संबद्धता, प्रत्येक शहर में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वकीलों की उपस्थिति जो सब हिंदुओं पर ब्राह्मणीय कानून लागू करने की कोशिश करते थे, बड़ी मात्रा में धार्मिक साहित्य का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद, हर जगह जाति सभाओं का उदय जो जीवन पद्धति के संस्कृतिकरण द्वारा अपनी अपनी जाति के सुधार के लिए यत्नशील थी, और प्रबल ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में वृद्धि जो देश के कुछ भागों में ब्राह्मणों को उनके अधिकार अथवा प्रभाव के स्थान से हटाने का प्रयास करता था। स्पष्ट ही यह सूची अपूर्ण और आजमाइशी है और वर्ण आदर्श की लोकप्रियता की पूरी व्याख्या अध्ययन द्वारा संभव ही है। संस्कृतीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे परिवर्तनों के बाद वह जाति परंपरा के स्थानीय समाज द्वारा सोपान में जो स्थान उसे मिला हुआ है उससे ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। कभी कभी कोई जाति ऐसे स्थल की मांग करने लगती है जो उसके सुपानी पड़ोसी मानने को तैयार नहीं होते। याचित और स्वीकृत प्रतिष्ठा के बीच इस प्रकार का असामंजस्य न केवल मतामत के क्षेत्र में बल्कि संस्थागत व्यवहार के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी होना संभव है। इस भांति मैसूर में हरिजन जातियां दस्तकारों के हाथ का बना खाना और पीने का पानी स्वीकार नहीं करती, जो निश्चय ही स्पृश्य जातियों में है और इसलिए हरिजनों का श्रेष्ठतर है। चाहे उनका विश्वकर्मा ब्राह्मण होने का दावा भले ही न माना जाए। इसी तरह क्रिश्चियन और अन्य जैसे गढ़रीय मार्ग ब्राह्मणों का, जो निश्चित ही ब्राह्मणों में शुमार होते हैं, बना हुआ खाना और पानी नहीं स्वीकार करते। मुझे उत्तर कुर्ग में एक लिंगायत से बातचीत की याद है जो कुर्गवासियों को जंगली लोग कादूजन कहता था, जबकि कुर्गी अपने सच्चे क्षत्रिय बल्कि आर्य होने का दावा करते हैं। सामान्यतः संस्कृतिकरण के साथ साथ और प्रायः उसके परिणाम स्वरूप संबद्ध जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है, पर गतिशीलता संस्कृतिकरण के बिना भी अथवा गतिशीलता के बिना संस्कृतिकरण भी संभव है, किंतु संस्कृतिकरण से संबद्ध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केवल पदमूलक परिवर्तन ही होते हैं, कोई संरचना मूलक परिवर्तन नहीं। अर्थात एक जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है, पर यह सब एक मूलतः अचल सोपान में घटित होता है, स्वयं व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता।